पहला सैमुअल अध्याय 22, अध्याय 22 पद 1 और पद 2 में। और दाऊद वहां से चला और अदुलाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वो उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अतः संपूर्ण प्रदेश से दाऊद के पास लोगों का समुदाय इकट्ठा होना शुरू हो गया, एक रंग बिरंगा या विचित्र परंतु विश्वास योग्य समुदाय या दल, जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब दाऊद के पास वहां अदुल्लाम में इकट्ठे हुए। अध्याय 22 पद 3 में, वहां से दाऊद मोआब के मिस्पा को गया। उसने असल में मृत सागर के क्षेत्र पार किया और दूसरी तरफ मोआब में गया और वहां अपने परिवार को स्थापित किया। अब वो जानता था कि उसके प्रति शौल का जो गुस्सा है वो अंततः उसके परिवार के विरुद्ध भटकेगा। अध्याय 22 पद 3 और पद 4 में, मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको मोआब के राजा के सन्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि दाऊद मसादा के किले में था, जो कि बाद में हेरोद राजा के द्वारा जाड़े के महल और एक किले के रूप में विकसित किया गया था। अतः ये संभव है कि दाऊद मृत समुद्र के क्षेत्र में था। ये भी संभव है कि यह सचमुच मसादा का वर्णन है, लेकिन वो वहां था उस किले में, जहां भी था शांति से था। मैं यहां चाहूंगा कि आप अपना ध्यान भजन संहिता 57 और भजन संहिता 142 को पढ़ने में लगाएं। ये दोनों भजन दाऊद के इस विशिष्ट अनुभव के समय लिखे गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों भजनों को पढ़ें, परंतु इन दोनों भजनों की पृष्ठभूमि के बारे में अभी सोचें। वो वहां नीचे है और शौल उसका पीछा कर रहा है। वो अपने माता पिता को यहां मोआब में सुरक्षा में लाया है। वो वहां मृत सागर के पास जंगल के क्षेत्र में छिपा है। अध्याय 22 पद 5 से लेकर पद 8 तक में, फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। अब तक भविष्यद्वक्ता जिसका नाम गाद है, वो जो कोई भी था, दाऊद से कहता है, यहां मत रह परंतु यहूदा को जा। तब शौल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शौल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शौल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामिनियो, सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वो तुम सबों को सहस्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, हे बिन्यामिनियो, मैं एक बिन्यामिनी हूं, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। अगर तुम मुझे अपना अध्यक्ष चुनो तो मैं तुम्हारे लिए ये और ये करूंगा। दाऊद के विरुद्ध एक तरह का राजनीतिक भाषण देता है। तुम जानते हो, अगर दाऊद को चुना और वो राजा हो गया तो वो तुम बिन्यामिनियों से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। वो यहूदा के घराने का है, तुम यिशै को जानते हो, इसलिए वो तुम्हारे संग इतना अच्छे से नहीं रहेगा जितना मैं रहता हूं। वो तुम्हें सहस्रपति और शतपति नहीं बनाने वाला और खेत इत्यादि भी नहीं देने वाला। यहां देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम लोग मेरे विरुद्ध हो गए। तुम मेरी जगह दाऊद के पक्ष में हो। तुम में से किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो कहां है। तुमने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है। अध्याय 22 पद 8 से लेकर पद 15 तक में। और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसे घात लगाने को उभारा है जैसे आज के दिन है। तब एदोगी दोएग ने जो शौल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहितूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा। अहीमेलेक ने दाऊद के विषय में यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पिलिस्ती गोलियात की तलवार भी दी। और राजा ने अहितूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शौल राजा के पास आए तब शौल ने कहा, हे अहितूब के पुत्र सुन। वो बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शौल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी जिससे वो मेरे विरुद्ध उठे और ऐसे घात लगाए जैसे आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वो तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वो मुझसे दूर रहे। राजा ना तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। शौल, मैंने सच में कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मैं तुम्हारा विरुद्ध नहीं हूं और तुम्हारे पास तुम्हारे पूरे घराने में दाऊद से ज्यादा विश्वास योग्य कोई कर्मचारी नहीं है। अध्याय 22 पद 16 से लेकर पद 23 तक में। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। भयंकर, अति भयंकर अपराध। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पियो और बैलों गदों और बेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। वो जो परमेश्वर के दुश्मनों के साथ ना कर सकता वो परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध कर रहा है। परंतु अहितूब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शौल ने यहोवा के याजकों का वध किया है, और दाऊद ने एब्याता से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था उसी दिन मैंने जान लिया था कि वो निश्चय शौल को बताएगा, तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। अतः अहीमलेक के घराने से एक भाग कर दाऊद के पास चला गया, और दाऊद ने अपने आप को इस परिवारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार समझा। वो जानता था कि उसने दोएग को छोड़कर गलती की थी, उसे उसको मार देना चाहिए था।